ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्माकुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। इन दिनों हम महाशिवरात्रि के आने वाले पर्व की तैयारी कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शिव जो परमपिता परमात्मा है, आज तक उन्हें हमने किस रूप में देखा, कैसे उन्हें पूजा और अब कैसे उनके सही स्वरूप को समझकर हम उनके साथ अपना रिश्ता जोड़ सकते हैं। आज फिर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
ओम शांति
सिस्टर शिवानी, अगर पिछली कड़ी में जाते हैं तो एक बहुत सुंदर बात आई थी कि जब हम शिवलिंग की पूजा करते हैं या हम मंदिर जाते हैं या किसी भी और यू नो प्रार्थना करने वाली जगह पे जाते हैं तो वहां जो फील होता है उनकी प्रेजेंस, इवन इफ वी नो कि वो जो मूर्ति है या वहां पर प्रेजेंट नहीं है वो फिजिकल फॉर्म में, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो वहीं जाकर जुड़ता है, हमें उनका अनुभव होता है। तो वो आपने कहा कि उस जगह से उस चीज से नहीं हो रहा है क्योंकि वो जड़ है, लेकिन जो अनुभव मुझे और कहीं अपने घर में नहीं होगा, काम पर नहीं होगा, गाड़ी में नहीं होता, वो वहां जाकर ही होता है, फिर वो कैसे संभव है?
परमात्मा कौन है, वो शक्ति अगर जो है उसकी जो क्वालिटीज होंगी वो क्या होंगी? प्योरिटी, लव, पीस, ट्रूथ, परफेक्शन, ये उसकी क्वालिटी है। हम आत्मा है, हमारी क्वालिटी क्या है? प्योरिटी, लव, पीस, परफेक्शन, ये हमारी भी क्वालिटी है। जब हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटीज को अनुभव करते हैं, उस पवित्रता को, उस शांति को, उस प्रेम को अनुभव करते हैं, तो क्योंकि वो क्वालिटी वही है जो उस शक्ति की भी है, हमें लगता है हमने उसको अनुभव किया। एक्चुअली हमने अपनी दिव्यता को अनुभव किया, और इसलिए कई बार ये भी कहते हैं कि परमात्मा ही हम सबके अंदर है। और फिर अगर कहें कि अगर हमारे अंदर है तो हमेशा अनुभव होना चाहिए, नहीं, वो कभी कभी अनुभव होता है। तो वो कभी कभी अनुभव होता है, वो जो हमारी फीलिंग है कि वो कब कब अनुभव होता है, वो तब तब अनुभव होता है जब वो प्योरिटी, वो शांति मुझे अनुभव होती है, तो मुझे लगता है कि मैंने परमात्मा को अनुभव किया, मैंने आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को अनुभव किया। आत्मा परमात्मा की संतान है और परमात्मा की जो क्वालिटीज है वो हर आत्मा की क्वालिटी है। इट्स लाइक सपोज आप हैं और आपका बच्चा है और आपकी कुछ आदतें आपके बच्चे के अंदर है और बाकी उस बच्चे की अपनी पर्सनालिटी है। और कई एक बार अगर मैं आपके बच्चे से बात कर रही हूँ और बात करते करते वो एकदम आपकी तरह ही बात कर दे,
या हम कहते हैं कि कभी कभी बिल्कुल वैसी लगी है,
बिल्कुल वैसी, और तब हम ये भी कह सकते हैं ऐसे लग रहा था कि कनुप्रिया बोल रही है, यू नो, डोंट बी से दैट। अब कनुप्रिया ना वहां थी, ना वो कनुप्रिया बोल रही थी, वो कनुप्रिया का बच्चा बोल रहा था, लेकिन उस बच्चे ने बिल्कुल उसके जैसे बोला, तो हमने कहा बिल्कुल ऐसे लगा कि जैसे कनुप्रिया बोल रही है। इसी तरह परमात्मा शांति का सागर है, पवित्रता का सागर है, हम सब आत्मा शांत स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, लेकिन आजकल हम उस क्वालिटी को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो हमारे संस्कार बन गए हैं वो बाकी हमारी लिस्ट है, तनाव, गुस्सा, डर, वो सारी। तो ये जो हमारी ओरिजिनल संस्कार है हम इनको बहुत बहुत कम अनुभव करते हैं क्योंकि हमारी कॉन्शियस माइंड, जो आपने कहा घर पे क्यों नहीं होता, ऑफिस में क्यों नहीं होता, गाड़ी में क्यों नहीं होता, क्योंकि गाड़ी में तो ये लेयर चल रही है, ऑफिस में क्या है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, वर्क रिलेटेड थॉट्स, घर पे क्या है, बच्चों को संभालना, ये थॉट्स चल रहे हैं। संस्कार कौन से वर्क कर रहे हैं, टेंशन, इरिटेशन, किसी पर चिल्ला देना, इस टाइम पे हमें प्योरिटी नहीं अनुभव हो रही है, शांति तो बिल्कुल अनुभव नहीं हो रही है। ठीक है, अब हम जाते हैं कोई ऐसे स्थान पे जहाँ वाइब्रेशंस बहुत अच्छी हैं, वो वाइब्रेशंस भी कैसे बने?
हाँ, वही मैं पूछना चाहती हूँ क्योंकि वो भगवान का घर है, वहाँ परमात्मा वास करते हैं, क्योंकि यही हम सोचते हैं, यू नो, कि प्राण प्रतिष्ठा हुई हुई है, बिकॉज दे आर देयर, तभी तो वाइब्रेशंस हुई। घर पे क्यों नहीं है वो वाइब्रेशंस?
घर पे नहीं है, घर पे वाइब्रेशंस कौन सी है? अच्छा, घर भी देख लो, अलग अलग लोगों के घर की अलग अलग वाइब्रेशन होगी। किसी के घर में आप जाओ आपको लगेगा बहुत पीसफुल है, और किसी के घर आप जाओ तो ऐसे लगेगा कि एनर्जी के अंदर बहुत एक हैवीनेस है। किस पे डिपेंड किया? एनर्जी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट
हाउस, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं. यस,
अब उस घर की पूरी फील अलग होगी. उस घर में अगर कोई पशु पक्षी होंगे ना, उनकी भी फील अलग होगी, डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशंस ऑफ दैट हाउस. तो जो लोग उस स्थान पर रहते हैं, उनकी सोच ज्यादातर कैसी है, वो फ्रेग्रेंस है जो उस स्थान में फैल जाती है. जो एक बाहर से आएगा, वो उसको इमीडिएट वो फ्रेग्रेंस मिलती है. यू नो, इट्स लाइक यू एंटर अ रूम एंड यू फील द फ्रेग्रेंस.
यू नो, कई बार वो बिखराव की फीलिंग रहती है, एक्चुअली यू कैन फील इट नाउ.
अगर आप किसी घर में एंटर हो जहां आपके आने से पहले ही बहुत जोर से झगड़ा हो रहा हो, और क्योंकि घंटी बजी और सब एकदम चुप हो गए, लेकिन वो जो वाइब्रेशन है झगड़े की, यू विल बी एबल टू फील,
हाँ, वो झंझनाहट सी महसूस हो रही है,
तो वो हैवीनेस. तो ये वाइब्रेशन कौन क्रिएट करता है? हम, जो उस स्थान पर रहने वाले हैं. अब लेट्स से मंदिर बना, मस्जिद बना, चर्च बने, गुरुद्वारे बने, सब बने, बहुत सालों से बने हुए हैं. एक एक करके जब हम उस स्थान पर जाते थे, अगर आप कोई नए स्थान को देखो तो उसमें इमीडिएटली वाइब्रेशन नहीं होती है. जब हम उस स्थान पर बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां जाते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, प्रे करते हैं. सोच किस डायरेक्शन में चल रही है?
हम उससे मिलने जा रहे हैं,
बात कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं. कोई गुस्सा नहीं कर रहे, कोई कभी धर्म स्थान पर आकर गुस्सा नहीं करता.
हम बोलते नहीं, जोर से बोलते नहीं है. हम कहते नहीं, यहाँ पर पूरा मेंटेन करना है, यू नो, इतने शांत.
सैंक्टिटी ऑफ द प्लेस हैज टू बी मेंटेन्ड. अब जब इतने सालों से इतने सारे लोग उस स्थान पर जाके इतनी अच्छी सोच क्रिएट करेंगे, और जब वो इतनी अच्छी सोच हम क्रिएट करते हैं, तो जो हमारी कॉन्शियस लेयर ऑफ थिंकिंग है वो स्टॉप हो जाती है, और जो हमारी ओरिजिनल लेयर है, जो हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है, उनको हम फील करते हैं. जब मैं काम के बारे में, घर के बारे में सोचना बंद कर देती हूँ, आई फील वेरी पीसफुल बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड क्रिएटिंग एनी नेगेटिव रॉन्ग थॉट्स. सो आई फील पीस, बट दिस पीस इज माई पीस because I am a peaceful soul. So when I sit there in that place, I feel very peaceful. लेकिन this I have to understand, वो मेरी quality है, और वो इस स्थान पर आकर मुझे इसलिए अनुभव हुई क्योंकि इस स्थान पर over a period of time वो quality बहुतों ने अनुभव की थी, और वो स्थान का vibration बन गया. तो उस स्थान में आने से वो vibration मुझे help करता है मेरी अपने उस original quality को feel करने के लिए. अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपके माइंड में कुछ बहुत टेंशन है, कोई बहुत प्रॉब्लम है, आपको कहीं भी जाकर पीसफुल नहीं लगेगा. इट इज पॉसिबल कि आप मंदिर में जाएं, आप कहीं भी जाएं, लेकिन आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो आपके माइंड पे ही चल रही है. कोई लेट्स से फैमिली में किसी ने शरीर छोड़ा है, डेथ है, आप रो रहे हैं, आप वहां भी जाएं, आप रो ही रहे हैं, क्योंकि आप अपनी कॉन्शियस लेयर को चुप नहीं करा पाए. जब तक आप उसको नहीं चुप कराओगे, आप अपने वो डीपर लेयर को फील नहीं करोगे. अब यही चीज आप अपने घर पे अपने कॉन्शियस लेयर को चुप करा लो, टेंशन, गुस्सा, इसको बंद करो. जस्ट सिट कामली एंड क्रिएट ब्यूटिफुल थॉट्स. यू कैन क्रिएट द सेम पीस सिटिंग इन योर ओन हाउस. इट विल बी, बट इट हैज टू हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. लेकिन घर का वातावरण कैसा है? हम टीवी देख रहे हैं, टीवी पर सारा दिन किस तरह की बातें आ रही है, कोई हमारी सोच है, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, घर की वाइब्रेशन वो है. जो हमारे ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उनकी वाइब्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन चुकी है, क्योंकि एक एक जो गया उसने अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट की, जगह की वाइब्रेशन बनी. अब जो जाता है उसको वाइब्रेशन का बेनिफिट मिलता है,
और फिर मैं अपना भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूं
ऑटोमेटिकली.
That's good.
Automatically, let's say ये वो स्थान है suppose, and I'm very tensed और परेशान अपने काम के बारे में सोचते सोचते, और फिर मैं इस जगह पर आई, एंटर हुई, जगह की अपनी फ्रेग्रेंस है, बहुत पीसफुल. मैं आई भी उसी पर्पज के लिए हूँ, हम जाते क्यों है. और जैसे ही मैं आई, मैंने भी कॉन्शियस एफर्ट किया कि मैं प्रे कर रही हूँ, परमात्मा का नाम ले रही हूँ, और उस वाइब्रेशन ने मुझे सपोर्ट किया, हेल्प किया. 5-10-15 मिनट में मेरी जो ये थॉट्स है ये बंद हो जाती है, एंड आई बिकम वेरी पीसफुल. व्हेन आई बिकम पीसफुल, आई एम एडिंग पीस टू द एग्जिस्टिंग पीस.
नो, आई एम एबल टू डू दैट.
ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने वहां बैठकर बहुत अच्छी थॉट्स क्रिएट की
mm-hmm.
तो हमने ऐड किया इसी, तो एक एक के एडिशन से ही तो उस जगह की पावर क्रिएट होती है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मंदिर में या कहीं भी ऐसे स्थान पर जाके कभी गलत नहीं सोचो।
हाँ।
क्यों कभी गलत नहीं सोचना? क्योंकि आप उस स्थान की शुद्धता को, उस स्थान की पवित्रता को आप मिक्सचरिटी कर रहे हैं। लेट्स से हम कोई ऐसे स्थान पर जाएं और हमारे अंदर बहुत इम्प्योर थॉट्स हो, बहुत ज्यादा कोई हेट्रेड है, लस्ट है, इट कुड बी एनीथिंग, मेरे अंदर बहुत उस तरह के थॉट्स है, वो भी तो जाएंगी, वो भी तो उस फ्रेग्रेंस में जाएंगी। अब वो फ्रेग्रेंस बहुत लोगों पर इम्पैक्ट करती है, तो मुझे ये ध्यान रखना है मैं उस जगह पर ऐसी कोई गलत थॉट नहीं क्रिएट करूं जो मैं उस स्थान का वातावरण इम्प्योर करूं, क्योंकि बहुत लोग उस स्थान पर आते हैं उस प्योरिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए।
एक और बात भी कहते हैं कि वहां जाकर, उन जगहों पर जाकर अगर गलत बात मन में आई तो वो सच हो जाती है। तो दूसरी तरफ जो हम मुराद मांगते हैं या मन्नत मांगते हैं, कुछ मांगते हैं, वो भी सच हो जाता है इसी कारण, बिकॉज दे आर पावरफुल वाइब्रेशन
होल पावर। सी, जो आज हमने बहुत सारी किताबों में पढ़ा या देखा, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ सीक्रेट है, वो क्या बोल रहा है? वो कहता है एक थॉट क्रिएट करो, लेकिन आपकी वो थॉट बहुत पावरफुल होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि वो ऐसे फिजल आउट हो जाए, आपकी थॉट पावरफुल होनी चाहिए। अब जो ऐसे स्थान है जहां पावर है, जहां प्योरिटी है, और आपका ये फर्म बिलीफ है, सी अगर आपका बिलीफ नहीं है वो काम नहीं करेगा,
इट डजंट वर्क, यस
इट डजंट वर्क। तो अगर मैं इस स्थान को ले लूं और मैं कहूं मेरा ये फर्म बिलीफ है कि यहां आकर जो मैं मन्नत मांगूंगी वो पूरी हो जाएगी, तो मैं यहां आती हूं, मैं वो थॉट क्रिएट करती हूं और उसके साथ मैं सेकंड थॉट क्रिएट करती हूं, अब तो मेरा ये काम हो गया, क्योंकि यहां जो थॉट क्रिएट करता है उसका वो काम हो जाता है। तो जब अब मैं अपने स्थान पर वापस जाती हूं, मैं उस थॉट को लेके कोई डाउट नहीं क्रिएट करती, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं आती, होगा या नहीं होगा, मैं कहती हूं नहीं, वहां क्रिएट की ना, ये काम तो होना ही होना है। थॉट क्रिएट कर दी, पावर ऐड कर दी, नेगेटिविटी कुछ नहीं, डाउट कुछ नहीं, डेस्टिनी मैनिफेस्ट हो गई। It has to happen.
So, but that place energy
because it was power, na?
हाँ.
It is power and positivity, and वो जो power हम experience करते हैं उसी ने हमें conviction भी दिया ना कि यहाँ वो power है,
क्योंकि लोगों, हाँ, वो conviction आती है past experience
आता है और बहुत लोगों के past experience होते हैं। सी, कोई भी चीज over a period of many many years बनी है ये चीज, ये कोई आज और कल की बनी हुई चीजें नहीं होती है, कई बार तो हजारों वर्षों की बनी हुई है। आप यहां जाएंगे तो आपकी मन्नत पूरी होगी। हुआ कैसे होगा? कोई एक गया होगा इनिशियली, उसके माइंड में वो थॉट आया होगा कुछ और उसका काम हो गया होगा। अब वो काम क्यों हो जाता है वो हम फिर देखेंगे, कि वो तो हमारे कर्म का रिजल्ट है, लेकिन उसका काम हो गया। तो उसने कहा मैं वहां गया ना, मेरा वो काम हो गया। उसकी बात सुनी, चार लोग और गए, चार लोगों में से फिर थॉट क्रिएट की। अब जरूरी नहीं होता कि चारों के काम होते हैं, दिस ऑल्सो वी ऑल नो सबकी मन्नत पूरी नहीं होती है,
टाइम लग जाता है, कहते हैं पता नहीं होता कब टाइम होता है,
कईयों की नहीं भी होती। लेट्स से मेरे घर में कोई बीमारी है किसी को, ठीक है, बहुत क्रॉनिक इलनेस है, और मैं जाऊं किसी स्थान पर और मैं मन्नत मांगू कि वो ठीक हो जाए, नॉट नेसेसरी।
हाँ, वो कहते हैं कि हम, और फिर हम कहते हैं कि हमारी ही मन्नत में कहीं वीकनेस थी,
राइट,
यू नो, मेरे ही मांगने में या मैं ही कुछ वो थी,
ठीक है। इसका मतलब कुछ टाइम मन्नत पूरी होगी और कुछ टाइम नहीं होगी। इट्स नॉट, नो प्लेस कैन गिव अ गारंटी ऑफ 100% रिजल्ट, कि जितने यहां आएंगे और जो मन्नत मांगेंगे उनकी सबकी हर मन्नत पूरी होगी। 100% रिजल्ट है कहीं किसी का?
एक्चुअली वही है कि मैं कितने विश्वास के साथ और भावना के साथ, यू नो, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एक्चुअली इफ वी गो बैक टू दैट
अगेन, देयर इज, इट्स अ लॉ ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑल्सो। इफ यू सी, अगर बहुत कुछ, सब कुछ जो अब हमें समझ में आता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरे किए हुए कर्म का रिजल्ट है, ये क्लियर है। एक है मेरे पास्ट कर्म और एक है मेरा प्रेजेंट कर्म। तो अब जब मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ मुझे ये चाहिए, एक है जो मेरा पास्ट कर्म था उसकी वजह से रिजल्ट आने वाला है, एंड एक है मैं अभी बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करती हूँ। अगर हम सब भी बहुत पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर लें, उसमें कोई डाउट ना क्रिएट करें, फिर भी हर एक को वो रिजल्ट नहीं मिलता है जो वो चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट तो वो किसी पास्ट कर्म का है। लेकिन जिसको वो रिजल्ट मिल जाता है, दे विल से
इट हैपेंड बिकॉज़
मेरी पूरी हो गई, और जिनको वो रिजल्ट नहीं मिलता है, दे विल से कि मेरी इसमें कोई कमी थी या भगवान की मर्जी नहीं थी, इसीलिए मेरी मन्नत तो थी, प्रार्थना भी मैंने बहुत भावना से की थी, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी। फिर कहेंगे भगवान की कुछ और मर्जी थी, और फिर हम कहते हैं कि भगवान की मर्जी में आप अपने आप को
राजी कर
लो, अपने आप को राजी कर लो। तो भावना, यस इट्स वेरी गुड, लेकिन भावना विद अंडरस्टैंडिंग, यू नो, भावना और अंडरस्टैंडिंग का अगर कॉम्बिनेशन क्रिएट हो जाए, देन यू रियली आर एबल टू वर्क वेल विद इट।
जैसे ये अंडरस्टैंडिंग आती है कि मैं ही जिम्मेदार हूं या मेरे कर्म ही जिम्मेदार हैं, तो वो जो वो भावना उसको सब कुछ दाता मानने की और उस पर छोड़ देने की, जैसा भी है जो भी होना है उस पर छोड़ा और जैसा वो दे रहा है वैसा जीना, वो खत्म होती है फिर।
लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें कोई एक स्थान मिल जाए जहां हम कहें यहां जो थॉट क्रिएट करो, जो मन्नत मांगो वो पूरी हो जाती है, तो फिर तो हमें लाइफ में कुछ बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है ना। उसके बाद हर थोड़े दिन के बाद वहां जाओ और जो आपकी कोई थॉट है उसको क्रिएट कर लो, वापस आ जाओ, आपकी थॉट पूरी हो जाएगी।
कर्म तो करना पड़े, देखिए हर बार हम ये कहते हैं कि कर्म तो उस तरफ करना पड़ेगा, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो मैंने जिस तरफ कर्म के लिए कदम उठाया है वो पूरा होगा कि नहीं। तो हमने क्या किया, हम मन्नत मांगते हैं कि ये मेरा काम हो जाए, उसके लिए फिर ये पक्का हो गया कि भावना मैंने उस पर छोड़ा,
ठीक है मैंने एफर्ट भी कर लिया, लेट्स से मेरा ये काम पूरा हो जाए, तो मैंने काम के लिए एफर्ट किया, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, सब कुछ, और साथ में मैंने मन्नत भी मांगी, विच इज वेरी ब्यूटिफुल। तो फिर मेरा वो काम हो जाना चाहिए ना।
अभी तो जब नहीं होता,
हो जाना चाहिए ना एटलीस्ट, फिर मेरे पास 100% एक श्योरिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि मैंने हार्ड वर्क किया, सिंसियरली किया, ऑनेस्टली भी किया, और साथ में मैंने मन्नत भी मांगी, तो फिर मेरा रिजल्ट क्या होना चाहिए उसके बाद। मेरा रिजल्ट भी तो 100% होना चाहिए ना, जो मुझे चाहिए था वो तो नहीं होता ना। कभी होता है, कभी नहीं होता, किसी के साथ होता है, किसी के साथ नहीं होता, एक ही व्यक्ति के साथ कभी होता है, कभी नहीं होता है। सो व्हाई द ऑप्शन, व्हाई शुड इट नॉट बी ऑलवेज। अगर कोई चीज करने से,
तभी तो फिर हम कहते हैं ना कि उसकी मर्जी थी होने की, करने की, या उसकी मर्जी नहीं थी करने की, ये हम तभी फिर हम कई बार नाराज होते हैं कि मैंने इतना कुछ किया तो इसका मतलब डजंट वर्क। और कई बार हम अपना विश्वास कायम रखते हैं तो हम कहते हैं
फिर वर्क करें,
हाँ,
विच इज सो ब्यूटिफुल। इसका मतलब हम अपने तरफ से अपना कर्म करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और फिर हम परमात्मा को याद करेंगे, जो विशेष परमात्मा की याद के स्थान बने हैं वहां जाएंगे, और हम परमात्मा को एक बहुत प्यार से, जो कहे मन्नत मांगना मतलब क्या करना, एक बच्चा बहुत प्यार
रिक्वेस्ट
से करना, अपने पिता को रिक्वेस्ट करता है कि मेरा ये काम करवा दो, मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया है, अब आप कर दो, ठीक है। सो विच मीन्स माई एफर्ट एंड देन हिज इंटरवेंशन कि वो करे। लेकिन ऐसे क्यों कि परमात्मा कभी कभी काम कर देता है और कभी कभी नहीं करता,
ये तो आपसे पूछना है
ना? ये नहीं, बट वी नीड टू ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग, क्योंकि ये जो सारी चीजें आई वो किस बिलीफ सिस्टम से उठी कि सारा कुछ जो मेरे जीवन में होता है वो परमात्मा की मर्जी से होता है। ये एक बहुत डीप बिलीफ सिस्टम है, इफ गॉड विशेस तो हो जाएगा, भगवान की मर्जी होगी हो जाएगा, अच्छा भी जो मेरे साथ हो रहा है वो भी उसकी वजह से, और जो नहीं अच्छा हो रहा वो भी उसकी वजह से, यहां तक कि ये जो पूरी सृष्टि ही है वो चलती ही उसकी मर्जी से है, और इसका मतलब दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है। नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, अगर सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है तो फिर मैं कैसे होनी चाहिए, दुनिया कैसी होनी चाहिए, और इस दुनिया में हरेक जो कर्म कर रहा है और हरेक के साथ जो हो रहा है वो सारा कुछ कैसा होना चाहिए, अगर वो एक परफेक्ट हस्ती की मर्जी से हो रहा है। वो एक परफेक्ट हस्ती है, और एक परफेक्ट हस्ती हम सबका भाग्य लिख रही है, तो हम सबका भाग्य कैसा होना चाहिए, हाउ वुड इट बी।
तो फिर वही वो कहते हैं ना कि कर्मों की सजा भी मिलती जाती है। सी देखो, आज जो खराब हो रहा है उसमें वही, जैसे एक फादर को लेते हैं, तो एक फादर आपको, आपकी हेल्प भी करता है, फिर आपको पनिश भी करता है अगर आपसे गलती हुई, ठीक है, और फिर आपको फिर उधार भी करता है. दैट्स हाउ वी टेक.
इसका मतलब कि कर्म हम करेंगे और फिर वो डिसाइड करेगा कि हमें क्या रिजल्ट देना
क्या
है.
हाँ, यही तो
कभी वो हमें अच्छा रिजल्ट देता है,
हम अगर अच्छे कर्म किए होंगे. सी अगेन वी टॉक अबाउट इट, कि हमारे कर्मों की, देखिए हम दोनों चीजें कहते हैं, परमात्मा की ये मर्जी, कर्मों की हमारी गति.
गति ठीक है. आप एक मदर हैं, आपके पास सपोज ये पावर आ जाए कि आप अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे, तो बच्चा कर्म करेगा पहले और फिर उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि उसका क्या रिजल्ट उसको मिलने वाला है. सपोज आपके बच्चे से आज बहुत बड़ी गलती हो जाती है, ठीक है, एंड आपको फिर उस, क्योंकि गलती बहुत बड़ी है, आपको जो पनिशमेंट देनी पड़ेगी वो भी बहुत बड़ी होने वाली है. एंड इट कुड बी समथिंग विच कोई हिला दे हमें, अगर हम किसी के घर में सुने कि ऐसा कुछ हो रहा है. एज अ मदर, क्या आप ये सजा अपने बच्चे के लिए लिख पाएंगे? अगर वो क्षमा का सागर है, अगर वो कल्याणकारी है, तो अगर वो प्रेम करता है मेरे से और मेरे से कोई गलती भी हो गई और मैं माफी भी मांग रही हूँ, ठीक है, लेट्स से कि मैंने रियलाइज भी कर लिया, मैंने पश्चाताप भी बहुत किया, मैं माफी भी मांग रही हूँ, वो माफ नहीं करेगा?
कई बार क्या होता है कि हम माफियां बहुत तहे दिल से मांग रहे होते हैं, तब हमें दिखता है कि हाँ हमारी माफी मांग ली गई, मान ली गई. और कभी कभी क्योंकि माफी उतनी नहीं मांगी है, अपना पश्चाताप उतना नहीं हुआ है, तो हमें उसकी सजा भुगतनी पड़ी.
मतलब जब परिस्थिति मेरे अनुसार हो जाती है तब हम कहते हैं मेरी मन्नत अच्छी थी, स्ट्रांग थी, या मेरी माफी कबूल हो गई, यू नो आई कन्फेस्ड और मेरा कन्फेशन एक्सेप्ट हो गया. और जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती है तो मैं कहती हूँ कि मेरी मन्नत में कमी थी या फिर मेरी माफी उतनी
कबूल नहीं
नहीं थी, या हम कहेंगे मेरी माफी जेन्युइन ही नहीं थी, मैंने दिल से नहीं माफी मांगी. एंड उससे क्या होता है, हम क्लैरिटी से बहुत दूर हैं. कितनी दूर है, जैसे आपने कहा बचपन से हमने दोनों चीजें सीखी, परमात्मा की मर्जी से चलता है और जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा. इन दोनों को हमने कंबाइन किया और हमने एक तीसरा क्रिएट कर दिया कि कर्म हम करेंगे फल वो डिसाइड करेगा. वो एक्चुअली ये दो कॉन्सेप्ट्स का कॉम्बिनेशन था कि परमात्मा की मर्जी से चलता है, क्योंकि हमने सोचा भगवान है, यू नो, तो भगवान क्या करेगा, बिकॉज ही सपोज टू बी ऑल पावरफुल.
हम कहते हैं वो क्रिएटर है, वो पालना करता है.
एब्सोल्युटली,
यू नो,
तो वो क्रिएटर है, तो हमने सोचा कि वो चलाता है इस दुनिया को, और इसलिए हमने कहा कि उसकी मर्जी से. फिर हमने ये दूसरी भी चीज सुनी थी कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, क्योंकि वन थिंग इज क्लियर, अगर सिर्फ उसकी मर्जी से चले इट विल बी अ परफेक्ट वर्ल्ड. इट विल बी अ, यू कांट हैव अ टेररिस्ट अटैक, यू कांट हैव कि आपका बच्चा 20 साल की एज में शरीर छोड़ रहा है, यू कांट हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स हैपनिंग विद गर्ल्स, दिस इज नॉट वॉट कैन हैपन. यू कांट हैव अ सुनामी,
यू कांट हैव सो मच पेन, हेट्रेड पेन. इतना
अगर हम एक एक घर भी खटखटाएं और उस परिवार से बात करें, मुश्किल है एक परिवार भी मिलना जिसके अंदर सब कुछ परफेक्ट है, यू नो, परफेक्ट हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ है, नहीं है. तो परफेक्ट भाग्य तो आज दिखाई नहीं दे रहा है, और हम कह रहे हैं परफेक्ट बीइंग सबका भाग्य लिख रहा है, एंड जो भाग्य है इट्स वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम परफेक्ट. तो परमात्मा आकर ये सिखाते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और परमात्मा उस फल में इंटरवीन नहीं करता है. इट्स लाइक अ पेरेंट जो कहे ये दो बच्चों के बीच का झगड़ा है, यू नो, कार्मिक अकाउंट तो हम दो बच्चों का. आप देखो कोई भी पेरेंट अगर दो बच्चों के झगड़े में इंटरफेयर करता है तो दोनों में से एक जरूर फील करेगा आप उसके साथ ज्यादा हमेशा उसकी फेवर करते हो, आप तो हमेशा मुझे ही डांट देते हो, आप उसको कुछ नहीं बोलते. अ पेरेंट इज नेवर एबल टू बी फेयर टू बोथ. तो जो फेयर पेरेंट होता है ना वो कहता है मैं नहीं इंटरफेयर कर रहा, तुम दोनों आपस में इसको कर लो. ऐसे ही हम सबके बहुत सारे हिसाब किताब है. सपोज मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है कुछ, फिर बहुत समय बीता, आत्मा ने शरीर बदला, आपने भी शरीर बदला, और फिर हम सामने आए. अब समय है कि आप मुझे मेरे किए का हिसाब किताब तो लाएंगे ही मेरे सामने. अगर उस समय मैं प्रार्थना करूं और मैं उसको कहूं आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे इससे बचा ले, अब मुझे ये वाली सजा नहीं चाहिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगी जो मैंने किया, एंड मैं बहुत माफी मांगू, और अगर वो उस समय मुझे बचा लेता है, ही इज बीइंग वेरी नाइस टू मी, नॉट बीइंग फेयर टू यू.
पर देन एक बात है कि जैसे बच्चा, अगर दो बच्चे झगड़ रहे हैं और पेरेंट देख रहा है, लेकिन जब वो मरने मारने पे आ जाए, सपोज एक दूसरे से खून ही करने लग जाए, तब तो वो इंटरवीन करता है.
इंटरवीन करके क्या करता है?
सुलटाता है ना,
समझा सकता है. वो भी इंटरवीन करके हमें समझा ही सकता है, लेकिन फिर भी अगर दो बच्चे लड़ना चाहें तो पेरेंट भी तो कुछ नहीं कर सकता। आज आप देखो कितने घरों में भाई 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 बहन के बीच कितने झगड़े हो रहे हैं, कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। आपको लगता है उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो ऐसा करें? और वो हर एक बच्चे को बैठ के समझाते नहीं है कि तुम भाई बहन होकर क्या कर रहे हो आपस में। कोई बच्चे सुनेंगे और कोई बच्चे नहीं सुनेंगे, लेकिन पेरेंट का रोल कहां तक था? समझाना, नॉलेज, प्यार देना, लेकिन फाइनली बच्चे का कर्म तो उस बच्चे का ही है। तो फाइनली पेरेंट क्या कहता है, मैं तो सिर्फ समझा सकता हूं, अब इसके बाद अब आपका कर्म है, और जैसा कर्म वो बच्चा करेगा वैसा रिजल्ट उसको मिलेगा। ये भी यही करता है, वो हमें समझा सकता है हमें क्या कर्म करना चाहिए, वो नॉलेज दे सकता है। जो हमारे पास्ट कर्म हमारे सामने आ रहे हैं उसको भी कैसे फेस करना है उसकी भी नॉलेज दे सकता है, लेकिन हमारे कर्म के फल को वो इंटरवीन नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि वो लॉ ऑफ नेचर ही नहीं है, उसका रोल ही अलग है। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हिज रोल इज,
बिकॉज दैट कैन बी वेरी यू नो सैडनिंग।
नो, इट इज वेरी ब्यूटिफुल बिकॉज वी अंडरस्टैंड। सी, अगर मुझे आपका रोल ना पता हो, मुझे आपकी पावर ना पता हो, मुझे आपकी पोटेंशियल ना पता हो, तो मैं आपकी पूरी पावर और रोल को यूटिलाइज नहीं कर सकती।
तो मैं तो अभी तक आपकी पावर और रोल को कुछ और ही ले रही थी ना, और इसीलिए इंतजार कर रही थी कि यू शुड इंटरवीन, यू नो।
लेकिन क्योंकि वो आपकी पावर थी नहीं, आप इंटरवीन करेंगे नहीं, और जो आपकी पावर थी उसको मैंने यूज
नहीं किया। दैट्स इम्पोर्टेंट, आई थिंक दैट इज वाई वी रियली नीड टू नो व्हाट इज हिज पावर एंड व्हाट इज हिज रोल एंड हाउ डज हाउ इज इट दैट ही इंटरवीन्स।
एब्सोल्युटली, एंड देन दैट्स गोइंग टू मेक मी वेरी पावरफुल।
मंच पर हमने हर बार बात की है कि बिलीफ सिस्टम्स को थोड़ा थोड़ा बदलने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने अभी तक मुझे वो अनुभव नहीं दिया जिसके लिए जिसका मुझे वायदा किया गया है। यू नो, हर शास्त्र और हर धर्म ने कहा है कि ये जीवन होना चाहिए, तो वो अब आज तक हम अभी अनुभव नहीं कर पा रहे थे। तो अब हम अगर परमात्मा की भी बात करते हैं, तो आपने कहा कि उसका उसकी पहचान और उसका रोल, उसकी पावर, How will I experience his power and what exactly is his power?
जो हमने पिछली बार भी देखा कि परमात्मा इस सृष्टि को चलाता है, ये हमारी बहुत समय की मान्यता थी, और दूसरी तरफ से ये भी था कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अब इनको हम सबको बिलीफ सिस्टम ही ले लेते हैं, वी डोंट नो विच वन ऑफ दिस इज ट्रू। हो सकता है परमात्मा सृष्टि को चलाता है, पत्ता पत्ता उसकी मर्जी से हिलता है। हो सकता है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, और तीसरा हो सकता है कि कर्म हम करेंगे और फल वो डिसाइड करेगा। और अब इस तीनों ऑप्शंस को आप ले और इसको चेक करें, इसको एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा लॉजिकल लगता है इसमें, कि विच वन डू यू थिंक मेक सेंस, यू नो, इट हैज टू मेक सेंस इन द होल थिंग।
कई बार हम ये भी तो कहते हैं कर्म भी तो वही करवाता है हमसे, यू नो बहुत बार हमारे होते हैं कि ये कर्म भी तो उसने मुझसे करवा दिया.
ऑब्वियसली क्योंकि अगर उसकी मर्जी से चल रहा है, यू नो इफ दैट इज द बिलीफ, तो फिर अगर हम यहां बैठे हैं तो भी उसकी मर्जी से बैठे हैं, उठ रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से उठ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से चिल्ला रहे हैं, दूसरे के साथ अत्याचार कर रहे हैं तो भी उसकी मर्जी से कर रहे हैं, तो क्या उसकी मर्जी से हम ये सब कर रहे होंगे? तो सबसे पहले तो मुझे अपनी चेकिंग करनी होगी कि व्हाट डू आई फील, सारा दिन में मुझे क्या फीलिंग आती है कि जो मैं कर रही हूं, इट्स माय विश, इट्स माय फ्री विल, मैं अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कर रही हूं, या समबडी इज कंट्रोलिंग मी और किसी और की मर्जी से मैं सारा दिन कर रही हूं. ये तो हम सबको खुद ही पता है ना, हमें महसूस हो रहा है, थॉट्स आ रहे हैं, हम डिसीशंस ले रहे हैं, हम चॉइसेस कर रहे हैं, जो चॉइस हम कर रहे हैं उसको हम कर्म मिला रहे हैं. कितनी बार तो हम काफी कंफ्यूज रहते हैं, बहुत बार सोचते हैं ये वाला करें, ये वाला करें, ऐसे करें, वैसे करें, फिर हम उस पर सोचते हैं, हम बात करते हैं लोगों से, डिस्कस करते हैं, डिसीशन लेते हैं, कर्म मिलाते हैं. ये कर्म हम खुद कर रहे हैं. डोंट बी फील दैट कि हम कर्म खुद कर रहे हैं. उठते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, बोलते हैं, सोचते भी हैं, किसकी मर्जी से कर रहे हैं? ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं. तो कर्म अगर हमारी मर्जी से हो रहा है तो इसका मतलब कर्म में उसका रोल नहीं है. तो अगर कर्म में उसका रोल नहीं है तो इसका मतलब जो सृष्टि पर हर एक आत्मा कर्म कर रही है वो अपनी मर्जी से कर रही है. अगर उसकी मर्जी से कर रही होती तो मैं आपको दुख न देती, मैं आपके साथ बुरा न करती. आज तो हम ऐसे कर्म भी कर रहे हैं कि जो एक आम इंसान भी कहता है कि कोई ऐसा भी कर सकता है, मतलब वो एक ह्यूमन बीइंग के भी कॉन्सेप्ट में नहीं फिट होता है कि ऐसा कर्म हम कर देते हैं. परमात्मा ऐसा कर्म कराएगा, फिर तो परमात्मा पे ही क्वेश्चन मार्क हो जाएगा कि कैसा कर्म कराता है हमारे से. कर्म हम कर रहे हैं. तो एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं, थॉट्स, वर्ड्स, एक्शन, वो हमारा कर्म है. यू नो मेनी टाइम्स हमने सोचा कि कर्म ओनली मीन्स जो बाहर किया. कर्म मीन्स एनर्जी विच आई रेडिएट आउट. एक तीर जो मैंने बाहर फेंका, यहां से फेंका, यहां से फेंका, या यहां से फेंका. अब जो तीर मैंने बाहर फेंका वो कुछ इफेक्ट क्रिएट करेगा. अब जो इफेक्ट वो क्रिएट करेगा उससे भी एनर्जी क्रिएट होगी. लेट्स से मैं आपके बारे में कुछ सोचती हूं, ये मेरा कर्म है. जो मैं आपके बारे में सोचूंगी, इट्स अ वाइब्रेशन दैट आई विल क्रिएट, वो आपको हिट होगी. आपकी अपनी थॉट्स हैं और मेरी वाइब्रेशन आपको रीच होगी, उस वजह से आप मेरे बारे में सोचना शुरू करेंगे. जो आप मेरे बारे में सोचेंगे वो आपकी वाइब्रेशन मेरे पास आएगी. इसका मतलब मैंने ऐसे कुछ भेजा और फिर वहां से कुछ मेरे पास आया.
जरूरी नहीं कि वो मेरी सोच में ही आएगा, वो मेरे बोल और एक्शन में भी आ सकता है.
कम इन एनी वे, बेसिकली इट्स एनर्जी विच इज कमिंग बैक. तो एक है कर्म, एनर्जी बाहर गई, और दूसरा है एनर्जी जब वापस आई. एनर्जी जो वापस आती है वो होती है लोगों के रूप में और सिचुएशंस के रूप में. सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, फाइनेंशियल हो सकती है, मेरी फिजिकल हेल्थ हो सकती है, मेरे रिलेशनशिप्स में हो सकता है. जो भी ऐसे मेरे साथ हो रहा है वो है एनर्जी जो मेरे पास वापस आ रही है, जिसको हम भाग्य कहते हैं, डेस्टिनी कह सकते हैं, लक कह सकते हैं. जो मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. आप मेरे साथ इस समय कैसे बात करें वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. तो मैंने सोचा कि ये जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है,
उसके कंट्रोल में, किसी के तो कंट्रोल में होगा.
तो हमने उसको वो किया कि जो कर्म मैं कर रहा हूं वो तो मुझे अवेयरनेस है कि यू नो दैट आई एम डूइंग, लेकिन जो मेरे साथ हो रहा है, लेट्स से मैं अचानक बीमार हो जाता हूं, मेरे घर में अचानक यंग डेथ हो जाती है, बिजनेस अच्छा चल रहा था सडनली कोलैप्स हो जाता है, ये सिचुएशंस कहां से आ रही हैं, ये किसकी वजह से हो रही है, ये किसने डिसाइड किया? तो जिनके लिए हमें आंसर नहीं मिल रहा था, हमने कहा ये वो चूज कर रहा है. तो कर्म हम कर रहे थे और हमने कहा जो मेरे साथ हो रहा है वो डिसाइड हो रहा है, लेकिन एक्चुअली रियलिटी वॉज कर्म हम कर रहे थे और वो ही कर्म का रिपरकशन हमारे सामने आ रहा था, वो इंटरवीन नहीं कर रहा था. अगर वो इंटरवीन कर देता तो वो हमारे रिपरकशन को थोड़ा सा तो हल्का भी कर देता, क्षमा भी कर देता, क्योंकि गलती करने के बाद हम रियलाइज भी करते हैं, पश्चाताप भी मांगते हैं. तो वो तीर ऐसे गया, तीर वापस आया.
मतलब कभी गलती हुई अगर तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती. यू हैव टू फेस इट.
एब्सोल्युटली.
इफ यू डन समथिंग, जाने अनजाने गलती की हुई है,
अनजाने तो कोई गलती नहीं होती.
पर अगर हमें किस सपोज किसी तरह का पता ही ना हो कि इसको, देखिए सपोज हमें, मुझे पता ही नहीं कि इस तरह गाड़ी चलानी है, या जो कुछ भी, कोई अनजान हूं मैं उस लॉ के बारे में, तब मुझसे
फिर भी आपको फाइन देना पड़ता है ना.
हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग.
सो इग्नोरेंस ऑफ लॉ डजंट सेव यू फ्रॉम द पनिशमेंट. इट्स गुड टू बी अवेयर ऑफ द लॉ. इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपने कहा कि सिर्फ भावना से होगा. सिर्फ भावना से इसलिए नहीं काम ठीक हो रहा क्योंकि लॉ का ज्ञान नहीं था, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ. जो आपने कहा जो गलती थी वो तो वापस आएगी, लेकिन जब गलती वापस आती है तब हमारे पास फिर ऑप्शन होती है कि अब इसको सही करना है या अब फिर एक और गलती करनी है.
मतलब कि हम फाइन ना दें और हम निकल जाए, या फिर हम करप्शन कर दें.
एब्सोल्युटली. इट्स लाइक आप मेरे साथ अब कैसे बात करेंगे या कैसे व्यवहार करेंगे, वो मेरा एनर्जी ऑन द रिटर्न है. ऐसे है, अब मेरे पास चॉइस है कि अब मैं आपसे कैसे बात करूंगी. आप मेरे साथ अभी कैसे बात करेंगे वो मेरे कंट्रोल में नहीं है.
वो तो किसी चीज का पुराना कहीं होगा, इस जन्म का या पिछला
है. यस, इट्स लाइक आप हाथ में एक बॉल ले और इस दीवार पे मारे. बॉल कैसे मारनी है, किस डायरेक्शन से, कितनी स्पीड से, सब आपके कंट्रोल में है. लेकिन एक बार आपके हाथ से गई फिर तो वो हिट करके
कहां जाएगी,
वापस आएगी. नहीं, वो वापस आएगी और वो वापस बिल्कुल उसी प्रोपोर्शन और एंगल में आएगी जिस एंगल में हमने फेंकी थी. हमारा कंट्रोल कब तक था, इधर तक. इधर नहीं है. लेकिन जो ब्यूटीफुल पार्ट है वो ये है कि एवरी मोमेंट, एंड विच मीन्स एब्सोल्युटली एवरी मोमेंट, हर पल हम एक बॉल इधर से फेंक रहे होते हैं और एक बॉल यहां आ रही होती है और उसके रिस्पांस में हम तुरंत एक बॉल और फेंक रहे होते हैं. लेकिन हमारा अटेंशन आज सारा किस पर है, यहां से आ रही है. और उस प्रोसेस में क्योंकि हम उसको देखकर रिएक्ट कर जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, गुस्सा कर देते हैं, हम जो अगला फेंकते हैं अब वो भी गलत हो जाता है. लेट्स से सपोज मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया था, नॉट इन दिस कॉस्ट्यूम. क्योंकि एक तो जब हमें कर्म समझ में आता है तो हमें समझ में आता है मैंने कर्म किया, आत्मा ने किया, उसका इस कॉस्ट्यूम से, शरीर से कोई कनेक्शन नहीं है. सपोज आज हम दोनों मिलते हैं and we have a meeting conversation. Suppose वो conversation अच्छी रही and we had a good time. तो अगली बार जो हम मिलेंगे तो वो meeting किस नोट पे स्टार्ट होगी, वो अच्छे ही नोट पे स्टार्ट होगी क्योंकि पिछली मीटिंग बहुत अच्छी थी. अगर आज हम मिले और अनप्लेजेंट कॉन्वर्सेशन थी, कॉन्फ्लिक्ट था, यहां तक कि कुछ आर्ग्यूमेंट भी हो गई, अब हम अगले हफ्ते फिर मिले तो जो मीटिंग स्टार्ट होगी नेक्स्ट, जैसे ही दो लोग मिलेंगे उस मीटिंग की एनर्जी कैसी होगी,
एंटगनिज्म होगा, यू नो लाइक अंडरकरंट.
हो सकता है अवॉइड भी करें, एक दूसरे को बात भी नहीं करें, विच मीन्स जो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी वो प्रीवियस मीटिंग के कैरी फॉरवर्ड पे होगी. लेकिन अब जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, शुरू में तो वो हैवीनेस होगी, लेकिन अब दोनों में से अगर एक जना डिसाइड कर ले आई एम चेंजिंग दिस,
आई डोंट लाइक इट, ठीक है,
छोड़ो ना जो हुआ था, बोलो ना पिछली बार क्या हुआ था, मैं प्यार से बात कर लेती हूँ. अगर दोनों में से एक भी प्यार से बात कर ले उस टाइम, वो चीज खत्म हो गई. और अब जो सेकेंड मीटिंग होगी वो कैसी होगी, इट विल बी अ ब्यूटिफुल मीटिंग. फिर जो थर्ड मीटिंग होगी इट विल स्टार्ट ऑन अ ब्यूटिफुल नोट. जो सेकेंड मीटिंग थी अगर उसमें हम दोनों में से एक ने भी चेंज नहीं किया उसको, एंड हमने वो नेगेटिविटी को कंटिन्यू किया, तो हमारी जो थर्ड मीटिंग होगी वो कैसी होगी,
वो तो और हायर होगी.
दैट्स ऑल.
यू नो हमारे अंडरकरंट्स और बढ़ चुके होंगे, कोल्डनेस और बढ़ चुकी होगी, वन अपमैनशिप जो है वो और बढ़ चुकी होगी.
इसका मतलब जितनी बार कैरी फॉरवर्ड होगा वो इंटरेक्शन की एनर्जी लेवल, अगर हम उसको चेंज नहीं करते हैं वो और भी ज्यादा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बढ़ता जाएगा. और अगर दोनों में से एक डिसाइड कर ले इनफ आज हम चेंज करते हैं, इट चेंजेस. ये इस मीटिंग में भी होता है और ये दो आत्माओं की मीटिंग में भी होता है जो हर कॉस्ट्यूम में एक दूसरे के साथ मिलते हैं. बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं, किसी ने मेरे साथ धोखा दिया, रिश्तों में धोखा दिया, बिजनेस में चीटिंग की, बीमारी आ गई, डेथ आ गई, रिटर्न कैरी फॉरवर्ड ऑफ प्रीवियस मीटिंग. क्यों आप मुझे आज धोखा दे रहे हैं, अगर मुझे ये नॉलेज ना हो कि इट्स अ रिटर्न ऑफ माई पास्ट कर्मा, तो मुझे आप अच्छे नहीं लगते, वैसे मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं, भगवान मेरे साथ ऐसे कर रहा है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा
क्योंकि
नहीं
मैं
हो रहा।
सोचती हूँ कि उसके माध्यम से भगवान मुझे सजा दे रहा है।
राइट
कि कई बार हम बड़ा मतलब अपने आप को ऐसा फील करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि वो तो माध्यम है, चलो जब अध्यात्म की बात भी समझते हैं तो फिर ये कहते हैं कि वो तो माध्यम बना पर सजा तो भगवान देना चाह रहा
है। इसका मतलब वो भी अच्छे नहीं है
और भगवान
और वो भी अच्छा नहीं है, दोनों अच्छे नहीं है। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की दोनों अच्छे नहीं है, इस समय मैंने कौन सी एनर्जी क्रिएट कर दी? अब ये जो आप कर रहे थे वो बॉल वापस आ रहा था, लेकिन आप अच्छे नहीं, आप गलत, वो भी बुरा, तो अब कौन सा बॉल फेंका? फेंका ना, अभी भी फेंका। नफरत, गुस्सा, दर्द, रोना, उदासी, कर्म आपके साथ मैं कैसा करूंगी? अब फिर से ऐसा ही होगा, जो नेगेटिविटी है वो बढ़ती जाएगी, हम फिर मिलेंगे एंड फिर इट विल कंटिन्यू। नाउ सपोज, नाउ आई हैव द नॉलेज कि ये जो मेरे साथ कर रहे हैं ये पास्ट का मेरे साथ रिटर्न है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैंने इनके साथ कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा किया था, और ये जो अभी कर रहे हैं ये गलत नहीं है। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि सामने वाला हमारे साथ गलत नहीं कर रहा है, वो वही करने आया है जो मैं डिजर्व करती हूँ, इट्स जस्ट कमिंग बैक टू मी। तो मुझे आप बुरे नहीं लगते, आप गलत नहीं लगते, और उसका इसमें कोई हाथ नहीं है तो वो भी बुरा नहीं लगता है। कहते उसने तो कुछ नहीं किया इसमें, उसने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी कुछ नहीं किया।
कोई बात पूछनी है, इनफैक्ट जब भी इनफैक्ट लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन पे जब कराते हैं तो ये बात आती है कई बार निकलकर कि जैसे सपोज एक रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आई है अब, सो देन दे गो बैक इनटू पास्ट एंड दे व्हाट दे सी, व्हाट द फाइंडिंग्स आर, ज्यादातर देखा गया है जो दो लोगों के, दो आत्माओं के साथ जो मुश्किल आई वो पास्ट में वैसी ही मुश्किल थी, उसमें रोल्स रिवर्सल नहीं थे। यू नो, जैसे सपोज इस जन्म में मैंने आपको धोखा दिया, सपोज अब मैं कुछ भी हो सकता हूं, आप कुछ भी हो सकते हो, मैं हस्बैंड भी हो सकता हूं, मैं यू नो प्रोफेशनल भी हो सकता हूं, बट मैंने आपको धोखा दिया। अब जब वो आपने रिग्रेस कराया, आपने देखा कि आप भी थे पिछले लाइफ में, मैं भी थी, और मैंने ही आपको धोखा दिया था उस लाइफ में भी, तो फिर वही व्यक्ति बार बार धोखा दे रहा है, ये दिखता है।
सी अगेन, जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इट ऑल डिपेंड्स कि प्रीवियस इंटरेक्शन में क्या हुआ था,
जो इससे भी पहले का हुआ होगा।
बहुत सारे ना, आप सिर्फ एक बार थोड़ी मिल रहे हैं।
हाँ,
हम जो दो लोग मिल,
अच्छा इसमें यह है क्योंकि पिछली बार अगर मैंने धोखा दिया हो तो उसमें आपका रिएक्शन सेम होगा।
और जब आप रिग्रेस होते हो आप सिर्फ अपना पार्ट देखते हो, आप दूसरे का नहीं देख सकते हो, यू गेट टू सी ओनली योर फिल्म, क्योंकि बेसिकली सिर्फ आपकी सीडी रिवाइंड हो रही है। दूसरे ने आपके बारे में कैसा सोचा था उस टाइम और दूसरे ने क्या क्या कर्म किए थे वो सीडी आप नहीं देख सकते, या तो फिर उसके लिए आपको दोनों को करना पड़ेगा और फिर देखना पड़ेगा। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि दोनों का पिछली बार भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट था, और क्योंकि दोनों का था आज भी दोनों का है। अब इम्पोर्टेंट है, मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो इस कॉन्फ्लिक्ट को चलने दे,
वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा,
और वो आगे कैरी फॉरवर्ड
होगा, होगा क्योंकि मैं वही वाला रिएक्शन लूंगी। ओ दैट इज वाई यू नो लाइक बिकॉज आई यूज टू फील कि अगर मैंने आपको धोखा दिया इस जन्म में तो पिछले जन्म में उसको मुझे धोखा देना चाहिए, बट इट डजंट हैपन
नेसेसरी। बेसिकली इट इज एन एनर्जी एक्सचेंज ऑफ पेन, ऑफ नेगेटिविटी। वो किसी भी रूप में आ सकती है, हर्ट के रूप में आ सकती है, चीटिंग के रूप में आ सकती है, रिजेक्शन के रूप में आ सकती है। बहुत लोग हैं जो रिजेक्टेड फील करते हैं, वो पहले भी रिजेक्टेड फील किए थे। सी बिकॉज इट्स अ संस्कार भी तो है ना जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अपने साथ। तो कार्मिक अकाउंट को चेंज करना मतलब अपने संस्कार को बदलना। आपने मुझे पिछली बार भी अगर धोखा दिया था, और अगर आप मेरे को, आप ही मेरे को इस बार भी धोखा दे रहे हो, मैंने पिछली बार भी हर्ट क्रिएट किया, मैं इस बार भी हर्ट क्रिएट कर,
मैंने वो हर्ट क्रिएट करना बंद नहीं किया, मैंने रिजेक्टेड फील करना बंद नहीं किया। ओ
तो देन दैट मीन्स वो ही संस्कार और वो ही क्वालिटी का कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड होता गया।
तब तक आप मुझे हर्ट कर, मतलब कर सकते हो,
मतलब तब तक एक नेगेटिव अकाउंट चलता रहेगा। जो हम कहते हैं ना, वी नीड टू लर्न एंड वी केम इन टू दिस लाइफ टू लर्न, यू नो बहुत लोग कहते हैं कि हमने चूज किया, हम लर्न करने के लिए आए। नाउ आई नीड टू स्टॉप एंड आस्क माई सेल्फ, एम आई लर्निंग और एम आई कंटिन्यूइंग विद द सेम मिस्टेक अगेन? क्योंकि फिर से हर्ट, फिर से जेलसी,
फिर से वही
रिजेक्शन,
क्योंकि उसी सिचुएशन में मेरा रिएक्शन एक्चुअली ऑटोमेटिकली वही होता है कि भाई जो मान्यता है कि अगर उसने मेरे साथ गलत किया है तो मैं कुछ कर नहीं रहा,
राइट,
लेकिन मैं फील जो है वो वैसे ही
तो वो मेरा संस्कार बन रहा है ना, कर्म यहाँ है, कर्म यहाँ नहीं है, कर्म यहाँ, मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकती हूँ, थिंकिंग हॉरिबल फॉर यू इनसाइड, तो वो मेरा कर्म नहीं, नहीं तो चेकिंग मुझे यहाँ करनी होगी कि मैंने उनके बारे में कैसा सोचा। अब जो आपने कहा हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, अब अगर आप मेरे साथ गलत कर रहे हैं, क्या मैं भगवान से प्रार्थना करके और मन्नत मांग के पूजा करके एक बहुत पावरफुल थॉट अगर क्रिएट कर लूं कि आप ठीक हो जाओ, आप बदल जाओ, तो क्या आप बदल जाओगे?
आप बदल जाओ, हाँ, क्योंकि आप मुझे धोखा दे रहे हो,
आप मुझे धोखा दे रहे हो। हम मन्नत क्या मांग रहे थे, हम प्रार्थना क्या मांग रहे थे, वो ठीक हो जाए। तो अब जो हम पूजा कर रहे हैं, परमात्मा के आगे अर्जी डाल रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं उनको ठीक कर दो, मेरी प्रॉब्लम को ठीक कर दो, मेरी परिस्थिति को ठीक कर दो। परिस्थिति को ठीक कर दो मतलब जो एनर्जी वहां से आ रही है, मेरा बिजनेस डाउन हो रहा है, मेरे रिश्तों में कड़वाहट, सेहत पे असर, उसको ठीक कर दो, विच मीन्स जो एनर्जी यहां से आ रही है उसको ठीक कर दो।
तो अब मन्नत मतलब हम ये मांगे कि मुझे ठीक कर दो,
because that's the only thing which is in my control,
because now this is what I was creating na,
yeah,
see I need to work on it now ki main na create karu,
see it's simple like this, aap isko ek diagram create karo continuously, ek ball ya ek arrow aise ja rahi hai, ek aise aa rahi hai, ek aise ja rahi hai, ek aise aa rahi hai, this is continuous chal raha hai, kyunki thought create kiya, response aaya, jo response aaya uske prati fir thought create kiya, jo yahan se aa raha hai इट्स अ रिटर्न ऑफ वॉट हैज गॉन हियर, जो यहां से आ रहा है वो मेरे हाथ में नहीं, जो यहां से आ रहा है वो टोटली मेरे हाथ में है अभी भी, तो मैं किस चीज पर एफर्ट करूं, इसको चेंज करूं जो मेरे कंट्रोल में नहीं, या इसको चेंज करने की कोशिश करूं जो पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है,
जिसको अभी तक हम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दे रहे थे ना?
Absolutely. अब हम क्या कह रहे थे, हर्ट भी हो रहे थे, उदास भी हो रहे थे, परेशान भी हो रहे थे, और उसको कह रहे थे प्रॉब्लम ठीक कर दो, थॉट क्रिएट करते थे मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, मेरी बातें ये ठीक हो जाए, कभी ठीक हुई
तो हम उसे कभी कहे कि मुझे शक्ति दे कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक रहूं,
मुझे शक्ति ज्ञान और मुझे वो पावर और प्यार दे जिससे मेरे सामने जो भी
कुछ
चीज
भी हो रहा हो,
जो भी चीज आए मैं उसको बहुत स्टेबिलिटी से और बहुत एक्यूरेटली फेस करूं,
बिकॉज इट्स इम्पोर्टेंट कि मैं अब उसके लिए कुछ गलत ना क्रिएट करूं,
एब्सोल्युटली, क्योंकि वो मेरे हाथ में है अभी कंटिन्यूअसली, और उससे क्या होगा जो अभी भी परिस्थिति आ रही है मैं उसको बहुत प्यार से क्रॉस कर सकती हूं, और आगे का फ्यूचर भी मेरा क्या है, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आप मुझे अभी ठीक से नहीं बात करते, अगर मैं हर्ट हो जाऊं, गुस्सा करूं, फिर मैं आपके प्रति और नफरत, ईर्ष्या, फिर मैं चार लोगों को आपके बारे में जाके बात करूं, ये मेरा सारा क्या हो रहा है, जो पास्ट आया वो भी अच्छा नहीं था, अब जो प्रेजेंट क्रिएट किया वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं था, अब अगर मैं थॉट एक क्रिएट करूं, इट्स ओके, अगर वो ऐसा करना चाहते हैं, टुडे आई विल नॉट गेट हर्ट, आई लेट गो, विच वी सॉ कि जब हम नेक्स्ट टाइम मिले अगर दोनों में से एक ये डिसाइड करे कि कोई बात नहीं, पिछली बार जो भी हुआ हम आज प्यार से बात करते हैं, इफ आई क्रिएट दैट थॉट इट्स ओके, आई फॉरगिव एंड आई फिनिश इट, मेरा प्रेजेंट सुंदर, मैं बहुत लाइट फील कर रही हूं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर मेरा प्रेजेंट सुंदर है तो मेरा फ्यूचर वो इंश्योर्ड है कि वो अच्छा होगा।
हम तो कितनी बार प्रार्थना में आई एम सडनली रिकलेक्टिंग कि हम कहते थे कि वो बुराई करे हम भलाई करे, इट वॉज सो इम्पॉसिबल टू थिंक अबाउट, लेकिन यही प्रार्थना होती है ना कि बदले की ना हो भावना, यू नो, कि हम सजा पाए अपने किए की, सारी जो प्रार्थनाओं में सब कुछ था कि जो हमने किया उसकी सजा मिले, लेकिन हम दूसरों के प्रति स्नेह रखें और प्रेम रखें।
और एब्सोल्युटली, और अब क्या होगा, अब जो मैं करूंगी उससे भी तो मेरी आगे की सिचुएशन बनती जा रही है ना, आप मेरे साथ अभी जो कर रहे हैं अगर मैंने प्यार से रिस्पॉन्ड कर दिया, बात हल्के में खत्म हो गई, कल आप भी मेरे साथ ठीक से बात करना
शुरू कर
देंगे,
क्योंकि मैंने जो करना था,
हाँ,
जो मेरे पास था वो तो मैंने देना ही था,
लेकिन जब आपने वो दिया मैंने अगर एक नए तरह का रिस्पॉन्स क्रिएट किया तो कार्मिक अकाउंट की जो एनर्जी थी वो बदल गई। लेट्स से इट्स नॉट जस्ट अ मीटिंग, लेट्स से आप एक बिजनेस पार्टनर हैं, आपने आके आज मेरे साथ कुछ गलत किया, पहले गुस्सा, नफरत, रिवेंज भी
बदला, सीटो इट कि आप जो हो बर्बाद हो जाओ,
ठीक है, अब अगर मैंने वो रिस्पॉन्स चूज किया मेरा प्रेजेंट क्या बना, बदला, नफरत, गुस्सा मेरी तबीयत पर भी असर पड़ता है।
अच्छा, लेकिन मेरे साथ अगर अभी सपोज मतलब आपने मैंने आपको धोखा दिया सपोज, तो क्या ये आपके लिए नहीं है कि जो मैंने धोखा दिया, सपोज मैंने आपका पैसे का गबन किया कुछ भी, दैट यू शुड गेट इट बैक, आपको मिलना चाहिए वो
द मनी?
हाँ
सी, एक है जो हमें बाहर लीगल एक्शन लेना है, कोई भी अगर एक्शन लेना है आप उसको ले तो कि आपके पास जो राइटफुली आपका है वो आपके पास आ जाएगा। लेकिन लीगल एक्शन लेने के साथ साथ एक दूसरे के प्रति कैसा सोचे, क्या हम कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ चल सकते हैं या नफरत घृणा इतनी ज्यादा आ सकती है हमें एक दूसरे के प्रति, और फिर हम बदला लेने के लिए सिर्फ लीगली नहीं करेंगे, हम कई बहुत सारे टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो जाए, तो मेरा प्रेजेंट कर्म क्या बनेगा? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। हम जो हम कह रहे हैं ना, हम जो मन्नत मांगेंगे वो हमारी सिद्ध होगी, अब भी होगी सिद्ध, क्योंकि अब जिस तरह से हम रिस्पॉन्ड करेंगे सिचुएशन उसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर हम देखो, आप कितनी बार अगर दो लोगों के बीच झगड़ा होता है, अगर एक कहता है छोड़ो खत्म कोई बात नहीं, चीज बदल जाती है। अगर दोनों उस कॉन्फ्लिक्ट को करते जाए बढ़ते जाए, इट कैन कम टू अ पॉइंट व्हेन टू पीपल आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर,
टू पीपल ओ विल नॉट इवन लुक एट ईच अदर्स फेसेस।
सेम चीज विद कार्मिक अकाउंट, वो सिर्फ इस सिंपल लेवल पे नहीं है, वो इस कार्मिक अकाउंट पे है। किसी ने आपके साथ गलत किया, बुरा हो रहा है, आपके पास बीमारी आई है, आपके घर में डेथ हुई है, पास्ट कार्मिक अकाउंट उतना ही हिसाब किताब था, लेकिन अब आप कितना सफर करेंगे, आप कितना रोएंगे, आप कितना चिल्लाएंगे, उदास होंगे, वो आपका प्रेजेंट डिसाइड करेगा और वो आपका फ्यूचर भी इंश्योर करेगा। अब भगवान को अगर याद करना है, क्योंकि वो उनको नहीं ठीक कर सकता, वो आपकी बीमारी को नहीं ठीक कर सकता, वो अगर इफ समबडी हैज टू लीव द बॉडी वो उसको नहीं रोक सकता, वो सिर्फ आपको ताकत दे सकता है और आपको नॉलेज दे सकता है कि इस सब को कैसे फेस करना है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अब कैसा कर्मा क्रिएट करना है, दैट इज हिज रोल। अगर इस अंडरस्टैंडिंग से पूजा करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रेयर, क्योंकि हर प्रार्थना में हर प्रेयर में ये सारी बातें बताई हुई है,
अब इसको समझ के रियल अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाई डू आई नीड, व्हाई डू आई नीड टू लेट गो, व्हाई डू आई नीड टू फॉरगिव, क्षमा को कितना बड़ा हर धर्म ने कहा है।
और अब जब मन्नत मांगेंगे तो ये मन्नत मांगेंगे कि मेरे सामने जो भी बात आएगी, आई शुड रिमेन क्लीन, क्लियर, प्योर, स्टेबल, लवफुल, मेरी हर बात ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर मैं दर्द में और अपने पुराने संस्कारों के साथ और मन्नत मांगू सिर्फ कि मेरी प्रॉब्लम ठीक हो जाए, तो वो कभी ठीक होगी कभी नहीं ठीक होगी, इज ओनली अ रिटर्न ऑफ द पास्ट कर्मा, लेकिन प्रेजेंट में आपने अपने कर्म को चेंज नहीं किया, सो यू विल बी कैरी फॉरवर्ड, सो वी नीड टू स्टॉप। दैट्स व्हाई सेड भावना भी, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर वो जुड़ती है, योर होल लाइफ कम्स इन योर कंट्रोल। सी, दिस इज अ वेरी पावरलेस फीलिंग, नहीं तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मेरे साथ होता जा रहा है, और फिर तो हम एक दूसरे साइकिल में चले जाते हैं जब हम और लोगों के पास जाते हैं अपनी डेस्टिनी को ठीक करवाने के लिए, अगेन हम पावर किसी और को दे देते हैं, फिर वो हमें जो कहते हैं हम वो करना शुरू करते हैं।
एक तरह से ये हुआ ना कि हमें उससे प्रेम भी है, लेकिन हमने अगर लॉ समझ लिया तो हम जज की पावर को भी समझ सकते हैं कि वो क्या कर सकता है।
हम उसके रोल को समझ के, इट्स लाइक आप एक ऑफिस में अगर जाएं, हर एक डिपार्टमेंट है, कौन से व्यक्ति के पास कौन सा डिपार्टमेंट है, आप उसके पास उसी के ले जाओगे। वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत लवफुल है, लेकिन उसका वो डिपार्टमेंट ही नहीं है, और आप उसके पास वो एप्लीकेशन डालो, वो कर नहीं सकता कुछ, मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, मेरी प्रॉब्लम ठीक करो, उसके हाथ में नहीं है। प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मुझे ताकत चाहिए, नॉलेज चाहिए, टोटली उसके हाथ में है। सो इफ वी डोंट अंडरस्टैंड हिम एंड हिज रोल, वील नॉट बी एबल टू यूज हिज पावर एंड पोटेंशियल इन द राइट वे।
तभी तो अभी तक हम आधी 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 उसका अनुभव कर पा रहे थे। शिवानी, थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत के लिए। ओम शांति। सचमुच परमात्मा से आज तक हम मांगते आए, और मांग क्या रहे थे कि मुझे ये मिले जो मैं चाह रहा हूं, या मेरे जीवन में ये परिवर्तन आ जाए। अब अगर हम ये समझ में आ रहा है कि जो कुछ हुआ है, चाहे वो कोई भी परिस्थिति है, चाहे हम कहीं पर भी हैं, किस भी तरह की सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये मेरी वजह से है या जो भी मैंने पिछला किया था, अब मांगने की जरूरत ये है कि मैं ठीक रहूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और वही मैं ही ठीक नहीं रहती हूं तो सिचुएशंस और बिगड़ती भी जाती हैं. अगर हम धीरे धीरे अपनी सिचुएशंस को देखना शुरू करेंगे हम पाएंगे कि हमसे भी गलतियां होती हैं जब सिचुएशन आती हैं. मेरा रोल उस वक्त स्टेबल नहीं रहता है तो मैं सिचुएशन को और बिगाड़ भी देता हूं. दैट इज वाई आज जो बात समझी कि जब मुराद मांग रहे हैं, मन्नत मांग रहे हैं, खुद में आत्मबल भरने की. और हर बार बात यही की जाती है कि क्षमा ना सिर्फ एक बहुत बड़ी शक्ति है बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रोटेक्शन है. मैं खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करता हूं अगर मैं क्षमा करना सीख जाता हूं. मन में कोई बात, कोई सवाल, आपका स्वागत. आप हमें ईमेल पर या फोन पर संपर्क कर सकते हैं.
इफ यू विश टू डिस्कस योर प्रॉब्लम और हैव अ क्वेश्चन टू आस्क और वॉन्ट टू नो योर नियरेस्ट राजयोगा मेडिटेशन सेंटर, राइट टू अस ऑन awakening@pmtv.in or call us on 0999955960.
Awakening with Rama Kumari is now itna hi. Aage phir mulaqat hogi. Om Shanti.
Karm karo.